सारा कमरे में अकेली रह गई थी। अयान और ज़ोया तो बाहर जा चुके थे, लेकिन सारा के चेहरे पर अभी भी वही हल्की सी मुस्कान थी जो अयान द्वारा इमरान की तारीफ सुनकर आई थी। कैसा इंसान चुन लिया है मैंने, वो धीरे से खुद से बोली, जिससे वो अभी तक मिली भी नहीं थी, जिसे बस कुछ मैसेजों से जानती थी और जिसके साथ निकाह करने जा रही थी। पर चाचू अयान ने जिस तरह उसकी तारीफ की थी, उससे सारा के दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई थी। सपनों में जी लेने वाली मुश्किल से 20 साल की इस लड़की को लग रहा था जैसे उसके सारे सपने इमरान के निकाह के साथ पूरे होने वाले हैं। उसने अपना फ़ोन उठाया और इमरान को मैसेज किया। आखिर ऐसा क्या जादू किया है आपने मेरे चाचू पर, वो आपकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे? रिप्लाई आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इमरान, बंदा है ही इस काबिल, एक बार मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम मुझे भी जान जाओगी जान। सारा ने हल्की सी हंसी के साथ हैरानी वाला इमोजी भेजा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इमरान तुरंत लिखने लगा, बस अब गिनती के दिन बचे हैं सारा, निकाह के बाद तुम मेरी हो जाओगी, मैं तुम्हारा। थोड़ा रुककर उसने फिर पूछा, वैसे तुमने घर पर क्या कहा, सब लोग अचानक सगाई छोड़कर निकाह के लिए कैसे मान गए? सारा ने उंगलियों पर लटों को घुमाते हुए मैसेज टाइप किया, क्योंकि इस बंदे में बहुत से गुण हैं, दुनिया मानती है तुम्हें और मैं भी मानने लगी हूँ। इमरान के होठों पर मुस्कान फैल गई थी। वो सारा को अच्छे से जानता था, लेकिन सारा ने अभी तक इमरान को नहीं देखा था। वो असल में कौन है, कैसा है? फिर भी उसका दिल बिना देखे ही उसे अपना मान बैठी था। मानवी आज कई दिनों बाद रीता से मिलने जा रही थी। रीता ने उसे शहर के एक छोटे से लेकिन साफ सुथरे रेस्टोरेंट में बुलाया था, वही रेस्टोरेंट जहां आज उसकी वेडिंग प्लानर टीम का भी थोड़ा बहुत काम था। जगह न बहुत बड़ी थी न बहुत छोटी, बस बिल्कुल ठीक ठाक। भीड़ भी बस उतनी थी कि जगह जीवंत लगे पर शोर ना हो। दोनों सहेलियां एक कोने की टेबल पर बैठ गईं। क्या बात है, मेरा फोन तो उठाती ही नहीं, बिल्कुल मन नहीं करता तुमसे बात करने का, है ना? रीता ने हल्के से नाराज लहजे में कहा। मानवी ने मुस्कुराते हुए समझाया, अरे नहीं रीता, ऐसी बात नहीं, बस ऑफिस जाने लगी हूँ तो थोड़ा बिजी रहने लगी हूँ। अच्छा ये बता, रीता ने भौं चढ़ाकर पूछा, तुम और वेद क्या चल रहा है, आगे कुछ बातचीत पढ़ी? मानवी ने एक लंबी धीमी सांस ली और नजरें झुका ली। नहीं, आगे कुछ नहीं हुआ। रीता तुरंत चिढ़ गई, तुम अपने पति से प्यार का इजहार क्यों नहीं करती, कह दो उसको, तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो बेवकूफ लड़की। कहना चाहती हूँ पर शर्म आती है, और वो भी मुझे वैसे ही देखते हैं, पर तंग भी करते हैं मुझे, पर एक लिमिट में। लिमिट क्या होती है तुम्हें पता भी है? रीता ने हंसते हुए उसे हल्की सी डांट लगाई। इसी बीच मानवी की नज़र अचानक रेस्टोरेंट के एकदम कॉर्नर में गई। रीता वो देखो, रीता ने भी उधर देखा। ये तो वेद लग रहा है, यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद किसी ऑफिस के काम से आए होंगे, मानवी ने खुद को समझाते हुए कहा, लेकिन उसके मन में हल्की बेचैनी उतर गई। कुछ देर दोनों अवनी की बात करने लगी, मानवी और वेद की 5 साल की बेटी। रीता ने पूछा तो मानवी ने मुस्कुरा कर कहा, अवनी की तो चिंता ही नहीं, वेद के मॉम डैड उसे देख लेते हैं। अचानक मानवी की नज़र मुख्य गेट पर गई। वेद बाहर निकल रहे थे, लेकिन जिस तरह लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए। रीता ने भी तुरंत गौर किया, मानवी ये ऐसे क्यों चल रहे हैं, ये तो जैसे नशे में। दोनों ने फौरन उस टेबल की तरफ देखा जहां वेद अभी बैठे थे। वहां बैठे लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मानवी को अचानक एक गहरी बेचैनी ने जकड़ लिया। कुछ ठीक नहीं है, वो लगभग फुसफुसाई और तुरंत उठ खड़ी हुई। रीता भी तेजी से उसके साथ बाहर भागी। पर जब तक वे रेस्टोरेंट के बाहर पहुंची, वेद कहीं दिखाई नहीं दिए। ये कहां जा सकती हैं, मानवी घबरा गई। और तभी मानवी की नज़र भीड़ के बीच एक जगह जाकर थम गई। वेद सड़क के बीचों बीच लड़खड़ा रहे थे और सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी तरफ आ रहा था। वेद! मानवी बिना एक पल सोचे भाग पड़ी। ना अपनी सुरक्षा की, न ट्रक की रफ्तार की, बस वेद तक पहुंचना था। उसने पूरी ताकत से वेद को धक्का दिया। दोनों सड़क की दूसरी तरफ जाकर गिरे। रीता चीखती हुई भागकर उनकी तरफ आई। मानवी को साफ दिख गया, ये कोई मामूली नशा नहीं था, वेद खतरे में थे। एक टैक्सी पास ही रुक गई। मानवी ने तुरंत वेद को उठाया और उसे लेकर टैक्सी में बैठ गई। रीता भी दरवाज़ा पकड़कर कांपती आवाज में बोली, मानवी ये क्या हो रहा है? मानवी फटी सांसों के बीच बोली, वेद कभी बिना सिक्योरिटी के नहीं जाते, लेकिन आज वो अकेले थे, कुछ गड़बड़ जरूर है। टैक्सी तेजी से भीड़ से निकल गई और मानवी की बाहों में बेहोश से पड़े वेद, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मानवी जैसे तैसे वेद को संभालते हुए घर की तरफ लेकर जा रही थी। टैक्सी के अंदर वेद का सिर उसके कंधे पर टिक गया था। उसकी सांसें भारी थीं और आंखें आधी खुली आधी बंद। वेद, बस थोड़ी देर और, घर बस पहुंच ही गया, मानवी कांपती आवाज में बोली। पर मुख्य गेट से ठीक पहले वेद का पूरा शरीर अचानक ढीला पड़ गया। वेद, मानवी लगभग चीख उठी। वो उन्हें कसकर पकड़कर किसी तरह अंदर घसीट लाई। नौकरों ने दौड़कर मदद की और वेद को ड्राइंग रूम के सोफे पर लिटा दिया। राजू, तुरंत डॉक्टर को फोन करो, उसने आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर तेजी से अपने बैग के साथ अंदर आए। वेद की हालत देखते ही उनकी आंखें गंभीर हो गईं। इनके शरीर में कोई स्ट्रांग नशा गया है, शायद कुछ मिलाया गया है, डॉक्टर ने तुरंत परीक्षण शुरू करते हुए कहा। उन्होंने ड्रिप लगाने का आदेश दिया। आईवी लाइन लगी, ड्रिप का तरल वेद की नस में उतरने लगा। फिर डॉक्टर ने वेद का पेट साफ करवाने की प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि जो भी पदार्थ उनके शरीर में गया था वो घातक था। मानवी लगातार रोके हुई सांसों के साथ खड़ी रही। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, पूरा शरीर कांप रहा था। उसी बीच घर का बड़ा दरवाजा खुला। बलवंत मेहरा और वेदिका मेहरा, वेद के मॉम डैड, घबराए हुए भागते हुए अंदर आए। वेद, ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? वेदिका रो पड़ी और मानवी को बाहों में ले लिया। बलवंत की आंखों में चिंता नहीं, दहशत थी। मानवी, कैसे हुआ ये सब? किसने किया ये? डॉक्टर ने हाथ रोककर उनकी तरफ देखा। अगर टाइम पर इनका पेट साफ ना किया जाता तो मैं साफ कहूँ, इनकी मौत तय थी। आप लोगों ने बिल्कुल सही वक्त पर इन्हें बचा लिया। वेदिका की टांगों से जैसे जान निकल गई, बलवंत की मुठियां कस गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने वेद की धड़कनें जांच कर लंबी सांस छोड़ी। अब खतरा टल गया है, इन्हें कल सुबह तक होश आ जाना चाहिए। मैं नर्स छोड़ रहा हूँ यहाँ। डॉक्टर चला गया। घर में एक भारी चुप्पी भरा तनाव फैल गया। मानवी वेद के बगल में जमीन पर बैठ गई, उसके हाथ को पकड़कर। वेदिका उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, पंडित जी सही कहते थे, जहां भी मेरे बेटे पर खतरा आता है तुम वहां पहुंचकर उसे बचा लेती हो। मानवी की आंखें भर आई। माँ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? वो सिर्फ आपका बेटा नहीं, मेरे पति भी हैं। उन पर खतरा आएगा तो मैं कैसे दूर रह सकती हूँ? वेदिका उसकी आंखों में देखती रह गई। उनमें डर, दर्द और अपनापन सब था। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है बच्चों को विदेश भेजने का। बार बार वेद के साथ ऐसे हादसे, ये सामान्य नहीं है। जहां उसकी जान हर जगह खतरे में है वहां रहना ठीक नहीं, वेदिका ने कहा। बलवंत मेहरा ने सिर हिलाया। अभी ये सब सोचना ठीक नहीं है, पहले वेद को होश आने दे, फिर फैसला करेंगे। लेकिन बलवंत मेहरा की आंखों में कोई और ही तूफान था, एक अंदर छिपा हुआ दबा हुआ गुस्सा। उन्हें जितना भी छिपाना पड़े, मानवी ने साफ महसूस किया कि बलवंत मेहरा को अच्छी तरह पता है कि वेद पर खतरा किसकी वजह से है, और ये खेल परिवार के अंदर का ही है। उनकी नजरें एक नाम पर चाटी की थी, रमेश मेहरा। बलवंत की मुट्ठी और कस गई। मैं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता, पर यह आखिरी बार है किसी ने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। चारों तरफ खामोशी छा गई, सिर्फ ट्रिप की बूंदे टपकने की हल्की आवाज आ रही थी।
और मानवी अपने बेहोश पति का हाथ पकड़े रोके हुए आंसुओं के साथ बैठी थी।